समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी हम बात करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी लालिमा अनेजा डैंग। लालिमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
बहुत बहुत नमस्कार मुकेश, और आप सबको जो हमें सुन रहे हैं श्रोता, आप सबको ये प्यार भरा नमस्कार। मुकेश जी ने तो पूरा प्रव्यू तो दे ही दिया है कि क्या क्या होगा इस प्रोग्राम में। स्टिल औपचारिकता है, लेट मी ऑल्सो जस्ट एड अ लाइन टू दैट। वेल, आई एम लालिमा अनेजा डैंग एज यू जस्ट मेंशन, एंड वी विल हैव फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज। वील हैव अ डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, वील हैव सम रिपोर्ट, सम कैप्सूल्स, सम बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मच मोर। ऑल दिस पैक्ड, tightly packed in the next 30 minutes. So without beating about the bush, let's get going.
बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों और वीरता की वीरता और बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन हमें राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहेगा।
गवर्नमेंट लॉन्चेस सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया।
IMD forecasts hailstorm and rainfall in several parts of northwest and central India for next 2 days.
देश 2004 में आज ही के दिन दक्षिण भारतीय तट पर आई सुनामी की 20वीं बरसी पर श्रद्धांजलि दे रहा है।
And in cricket, Australia scored 311 for 6 at stumps on the opening day of 4th test of Border Gavaskar Trophy at Melbourne. And friends, Prime Minister Narendra Modi today said that the vastness of Indian democracy is based on the teachings of the gurus, the sacrifices of the sahibzadas, and the basic mantra of the unity of the country. Well, we are talking about Veer Bal Divas. While addressing Veer Bal Divas at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister said that Guru tradition has taught people to look at everyone with equal respect, and the Constitution also inspires us with the same thought. Mr. Modi said, life of the brave Sahibzadas teaches people not to compromise with the integrity and ideas of the country.
संविधान हमें सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है, और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है।
जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान लोगों को देश की संप्रभुता और एकता को सबसे ऊपर रखने के सिद्धांत की सीख देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह बहुत छोटे थे, मगर उनका साहस आकाश से भी ऊंचा था।
He said, this day of Veer Bal Divas teaches that no matter how difficult the situation may be, nothing is bigger than the country and its interests.
वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहबजादों से राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है उसकी नींव में साहबजादों की वीरता है।
Mr. Modi said that from history to present, youth energy has always played a big role in India's progress. He said that from the freedom struggle to the mass movements of the 21st century, the youth of India have contributed to every revolution. Well, Guru Gobind Singh was the only son of Guru Tegh Bahadur Ji, the ninth Sikh Guru. And when we talk of Guru Tegh Bahadur Ji's four sons who died during his lifetime, two in battle and two were executed by the Mughal governor. And that's very unfortunate indeed, but that was very brave of the boys. And Guru Gobind Singh Ji, we all know, was the 10th Guru. He was very efficient in reading and writing, as well as martial arts such as horse riding and archery. And India owes a lot of saving our country and our national interests thanks to Guru Gobind Singh Ji. His elder son Sahibzada Ajit Singh, aged 17, and Jujar Singh, aged 13, were killed in the Battle of Chamkor in December 1704 against the Mughal army. And yes, you want to say something, Mukesh?
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। लगभग 3,500 बच्चों और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत बच्चों ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया।
All right, and Prime Minister Modi emphasized his vision of bringing 1 lakh youth into politics whose families have never been involved in active politics. He added that this initiative was crucial for the next 25 years and encouraged the youth to be part of this campaign to bring a new generation into politics. Mr. Modi said that the Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue will be held at the beginning of next year on Swami Vivekananda's birth anniversary. He said that millions of youth from villages, towns and cities across the country will participate, discussing the vision and roadmap for a developed India. As we know, Mukesh, our Prime Minister is a man of vision, a long-term vision. जी. And often, very very often you hear, अरे politics में क्या करना है? It's dirty politics. Politics is always dirty. मगर देश कैसे चलेगा अगर हमारे होनहार बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं आए?
बिल्कुल सही कहा।
तो अभी बहुत अच्छा है,
बहुत सारे युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है।
बिल्कुल, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। एंड जस्ट एज द कंट्री हैज टैप्ड आवर स्पोर्ट्स टैलेंट वेरी एफिशिएंटली बाय हैविंग वन लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, चेकिंग एंड टैपिंग द टैलेंट, सिमिलरली वी नीड टू टैप टैलेंट एंड आई थिंक द प्रोसेस हैज स्टार्टेड ऑलरेडी टू सी हु आर द वंस, द लीडर्स हु आर एक्टिव, हु हैव अ नेशनल इंटरेस्ट इन माइंड एंड हु हैव अ फील फॉर द कंट्री, हु हैव heart in the right place. Some change is required in the political landscape so that when the youngsters come into politics, the country will surely move forward with a new vision as it is a new India.
Bilkul.
Well, moving on, President Draupadi Murmu also conferred the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar on 17 children for their exceptional achievements in 7 categories in New Delhi today. Well, what better day could this be observed as better than this, that 17 children were given the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar on this Veer Bal Divas Day. And these children, who hail actually from 14 states and union territories, were recognized for their accomplishments in art and culture, bravery, innovation, science and technology, social service, sports and environment. And each awardee received a medal, a certificate and a citation booklet. And when the Honorable President addressed the gathering on this occasion, she also paid homage to the bravery and sacrifice of the Sahibzadas on Veer Bal Divas. She highlighted that this day is observed every year to honor the unparalleled sacrifice and courage of the younger sons of the 10th Guru of Sikhs, Guru Gobind Singh Ji. And she congratulated the children who received the awards.
बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर बल दिया कि उनमें से प्रत्येक में अद्वितीय गुण हैं और उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके इन उपलब्धियों को बड़े पैमाने पर साझा करने का भी आग्रह किया।
अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए, किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई, किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं, किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। तो तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्रहित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है।
So as we remember our gurus, Guru Tegh Bahadur Ji, Guru Gobind Singh Ji, it is in Sikh religion that the concept of Sant Sipahi came forward, ki Sant sirf Sant mein hi samaj mein na rahe, balki Sipahi ban ke aage aaye aur desh aur ek community ki aur ek society ki raksha kare, isn't it Mukesh?
Bilkul sahi kaha.
Let's move ahead.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। इस क्रम में सबसे पहले हम चलते हैं कार्सियांग। दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में एक सफेद जोड़ा बाघ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। एक माह पहले हैदराबाद चिड़ियाघर से इन सफेद बाघों को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग लाया गया था। एक महीने के क्वारंटीन के बाद कल 25 दिसंबर 2024 से पर्यटकों के लिए इनका पिंजड़ा खोल दिया गया। इन दोनों सफेद बाघों को देखने के लिए दार्जिलिंग के इस चिड़ियाघर में हजारों पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है, तो सुनते ही रिपोर्ट।
विगत 28 नवंबर के दिन सामान्य आदान प्रदान योजना के तहत हैदराबाद से दो सफेद बाघ दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में लाए गए। 24 दिसंबर तक इन्हें पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु क्वारंटीन में रखा गया। कल 25 दिसंबर से इन्हें आम लोगों को देखने हेतु खोल दिया गया। ये दोनों बाघ ल्यूसिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स प्रजाति के हैं। दोनों बाघों में एक की आयु 4 वर्ष की है तथा दूसरे की आयु 7 वर्ष की है। दोनों का नाम क्रमशः नागौड़ी व आकाश रखा गया है। इस तरह भारत के सबसे ऊंचे स्थानों के चिड़ियाघरों में सबसे बड़ा इस दार्जिलिंग जू में कुल बाघों की संख्या 6 हो गई है। आज 26 दिसंबर को इस चिड़ियाघर में नीदरलैंड से 2 रेड पांडा भी लाए गए हैं। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के निदेशक डॉक्टर वसवराज एस हेलियाची का कहना है,
एक महीने पहले हमने हैदराबाद जू से 2 टाइगर्स लाए हैं। आज वो क्वारंटाइन कंप्लीट हो गए और हम उसको डिस्प्ले में छोड़ रहे हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम था और दार्जिलिंग जू और हैदराबाद के जू में, उस एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर हम ये लेके आए थे।
हिमालय के जीव जंतुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए सन 1958 में समुद्र तल से प्राय 7000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में करीब 67.56 एकड़ की भूमि पर दार्जिलिंग शहर में दार्जिलिंग चिड़ियाघर की स्थापना की गई थी। सन 1975 में देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इस चिड़ियाघर में आई थी तथा उसी समय इसका नाम बदलकर पश्चिम बंगाल की चौथी राज्यपाल पद्मजा नायडू के नाम पर पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग रखा गया। दार्जिलिंग में यह चिड़ियाघर पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। प्रतिवर्ष इस चिड़ियाघर को देखने करीब 3 लाख से अधिक देश विदेश के पर्यटक दार्जिलिंग आते हैं। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शियांग।
Well, if this were not an audio medium, but a video medium, visual medium, we would have loved to show our listeners what a white tiger would look like. Anyways, let's move on from Kurseong to Srinagar. And we all know that one of the basic needs which we take for granted in our lives, our requirement, is that of bijli, that's electricity. For many in the cities, they take electricity for granted, but it's so important that they say bijli hai to industry hai to job hai, aur bijli hai to padhai bhi hogi, sab kuch hoga. All development will take place if there is electricity. The central and union territory governments have been vigorously pursuing and focusing on generation and supply of power to consumers in Jammu and Kashmir, and this has brought positive scenario on the ground expectedly. Apart from efforts to streamline power supply to consumers, the Power Development Department Jammu and Kashmir has launched a consumer and eco-friendly power scheme called Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana in JNK. Here's a report. Let's listen in.
This scheme is likely to prove a game changer for ensuring uninterrupted and sustainable power supply to all the beneficiaries of this flagship scheme. Talking to Parikrama, Principal Secretary, Power Development Department, J&K, H. Rajesh Prasad outlined the features of this scheme.
इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार 1 किलोवाट के लिए 33,000 की सब्सिडी है, दूसरे किलोवाट के लिए और 33 मतलब 66,000 और तीसरे किलोवाट के लिए सब्सिडी मिला के 85,000 1000 की सब्सिडी मिलती है। जम्मू कश्मीर सरकार ने उसको और अगमेंट किया, एक एक किलोवाट के लिए 3000 यानी 3 किलोवाट तक और 9000 टोटल मिला के 94000 की सब्सिडी अवेलेबल है, मगर सरकार ने उसको पुख्ता बंदोबस्त किया क्योंकि कंज्यूमर अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, लोन ले ले कम ब्याज दर 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। वो लोन की अवधि होगी 10 साल। हम यहाँ जम्मू कश्मीर में तकरीबन 80,000 लोगों को ये सुविधा देने के लिए इतना टारगेट हमें मिला है। ये एप्लीकेशन आज ओपन है, एक पोर्टल है भारत सरकार का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का, उस पोर्टल में जाके उसमें अपना पर्चा भर सकते हैं। पर्चा भरने के बाद उसमें प्रक्रिया है, उसको या वो अपफ्रंट पेमेंट करें या लोन के द्वारा पैसे उसको अरेंज करें, उसके बाद इंस्टॉलेशन तुरंत हो जाती है।
जम्मू एंड कश्मीर हैज ह्यूज पोटेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। द जनरल पीपल इन कश्मीर रीजन एंड दोज बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप इन पर्टिकुलर एक्सपेक्ट टू मोर टैंजिबल इनिशिएटिव्स ऑन द पार्ट ऑफ द यूटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर सीमलेस पावर सप्लाई ऑन अफोर्डेबल टैरिफ। तारिक रात फॉर परिक्रमा श्रीनगर।
और जम्मू कश्मीर से अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों विंटर कार्निवल चल रहा है। 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलने वाले शिमला विंटर कार्निवल में विभिन्न सांस्कृतिक दलों के अलावा कई जाने माने कलाकार रंगारंग कार्यक्रम पेश कर रहे हैं और वहीं 100 से अधिक स्टॉल भी लगाए गए हैं जहां लोगों को पहाड़ी व्यंजन मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया है, तो सुनते हैं रिपोर्ट।
राजधानी शिमला में इन दिनों विंटर कार्निवल की धूम है। कार्निवल के दौरान जहां विभिन्न सांस्कृतिक दल अपनी संस्कृति की झलक पेश कर रहे हैं, वहीं जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों का भी खूब मनोरंजन कर रहे हैं। कार्निवल के पहले दिन कड़ाके की ठंड में शिमला के माल रोड पर महिलाओं द्वारा डाली गई महानाटी जहां सभी के आकर्षण का केंद्र रही, वहीं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शबाब साबरी ने कई बॉलीवुड गाने गाकर वहां मौजूद हजारों लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान आयोजित राष्ट्रीय फैशन वीक कार्यक्रम में 4 राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्निवल के शुभारंभ अवसर पर कहा कि ऐसे आयोजनों से हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।
महोत्सव होते हैं जो हिमाचल की संस्कृति है, जो हिमाचल के संस्कार है, वो इन कार्निवल के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश देश के पर्यटक राज्य के रूप में सबसे अधिक विकसित हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने नोटिफिकेशन की कि जो भी हिमाचल प्रदेश में शॉप है, रेस्टोरेंट है, खाने के ईटिंग ज्वाइंट्स है, इन सबको 24 घंटे खोलने का निर्णय लिया है। फैसला उन्होंने करना है कि किस समय बंद करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रहेगी ताकि कोई पर्यटक किसी भी समय आए और भूखा ना जाए। 2 जनवरी तक शिमला का विंटर कार्निवल सभी प्रकार के पर्यटकों का अतिथि के लिए तैयार है, क्योंकि अतिथि देवो भव की संस्कृति जो भारत वर्ष की है और जो हिमाचल की अपनी संस्कृति है कि सबके साथ मेल मिलाप भाईचारे के साथ रहकर जो विंटर कार्निवल है इसका आनंद उठाना है। और मेरा पर्यटकों से भी अनुरोध रहेगा कि जो प्लास्टिक है और जो खाने की चीजें है उसको डस्टबिन में डालें ताकि जो पहाड़ों की सुंदरता है वो बनी रहे।
शिमला विंटर कार्निवल में स्वयं सहायता समूहों द्वारा 100 से अधिक फूड स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें लोगों को कई प्रकार के पहाड़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड व सेना के बैंड की शानदार प्रस्तुतियां और क्राफ्ट मेला व लिट फेस्ट जैसे कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। परिक्रमा के लिए शिमला से मैं राजकुमारी चंदेल।
अरे भाई, क्राफ्ट मेला लिट फेस्ट तो ठीक है, मेरा ध्यान तो पहाड़ी व्यंजन पर जा रहा था। बार बार मुझे लगा ओ माय गॉड, एंड बिकॉज द फूड विच इज ग्रोन इन द ऑन द हिल्स एक्चुअली लाइक यू नो व्हाटएवर रागी और द मंडुआ एज वी कॉल इट और घी, इट्स यूजुअली विदाउट केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड इट्स डिलिशियस। द साग विच इज ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स इज एब्सोल्युटली डिलिशियस एंड द घी विच कम्स फ्रॉम स्मॉल काउज बिकॉज एज दे ग्रेज अप द माउंटेन्स दे ईट अ लॉट ऑफ गुड हर्ब्स which the ghee which comes from them, A2 ghee is absolutely, oh my God, its fragrance is amazing. Before I get lost into all that, let's move on to Bengaluru. Friends, citizens can do wonders if they turn into a mission mode, undoubtedly, isn't it? Standing testimony to this dictum are two joggers in Bangalore who transformed a four-acre dump yard into a lush green butterfly park. Think of Delhi, we would need two joggers yahan par hai, hame to bahut joggers ki zarurat hogi agar hum apna dump yahan pe teen jo hamare paas dump yards hai saaf kare Delhi mein. Anyway, let's not get involved into all that. Here's more from our correspondent.
If every citizen wants to serve society, our country could be a much better place to live in. There are several examples set by citizens across the country when voluntary, proactive citizens driven by social consciousness have worked wonders for the society. One such effort is reported from Mangaluru in Karnataka. Two morning joggers, Raviraj Shetty and MD Sri Kumar, noticed an eyesore of garbage dump on a 4-acre plot near Mangala Stadium next to Karavali Utsav ground. They volunteered to clear the area in 2017. It took them 1.5 months to clear heaps of garbage dumped over the years near the basketball court. Once the space was cleared, they started planting host plants to attract butterflies. They bought plants from nurseries and forest departments. Today, the entire space next to Mangala Stadium is covered with over 20,000 plants. The saplings of hibiscus, jasmine, jamun, papaya, mango, lemon and jackfruit, alongside a variety of peanut butter plants, are attracting butterflies and birds. They installed sprinklers when water supply became scarce. The sore spot has become a scenic spot. Today, after 7 years, the walkers and athletes who visit the stadium have the company of flowers, green shrubs, birds and butterflies flocking the biodiversity spot. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
Well, today's morning began with a sad news. One of the most influential figures in Malayalam literature and cinema, M.T. Vasudevan Nair, passed away in Kozhikode last night. Often referred to as M.T., the 91-year-old Gyanpeeth awardee played a pivotal role in shaping the cultural landscape of Kerala. The mortal remains of the acclaimed writer will be consigned to flames this evening. Here's more from our Kochi correspondent.
Malayalam literature and cinema lost a master storyteller and a filmmaker with exceptional merit, blending simplicity and depth. His works reflected the social realities of Kerala, besides a clear understanding of human emotions and societal issues. His themes focused on love, betrayal, alienation, and human struggles. He had an uncanny ability to portray the lives of ordinary people, besides combining realism with philosophical depth. As a writer, he explored various themes touching upon tradition, relationships, straddling both literary and cinematic fields with equal ease. His screenplays transformed films into deeply emotional and intellectual experience that displayed his skill for storytelling and integration of literary elements. M.T.'s major works include Malikattu, Kalam, Banyu, Asaravittu, and Randamuram. He penned several critically acclaimed screenplays, Nirmalyam, Uru Vadakan Veeragatha, Parinayam, Sadayam, and Kadavu, among others. A recipient of Jnanapeeth in 2005, M.T. was conferred with Padma Bhushan, the Kendra Sahitya Academy Award, and the Kerala Sahitya Academy Awards for his contributions to Malayalam literature. He was also awarded Kerala Jyoti, Odakudal, Vallathol, Infection and Vayalam Awards, besides the J.C. Daniel Award for Lifetime Achievement in Malayalam Cinema. The passing away of M.T. marks the end of an era whose works played an unparalleled role in shaping the cultural landscape of the state. Raj Mohan, Akashwani News, Kochi.
और लालिमा बताएं कि व्यापार जगत में क्या चल रहा है
व्यापार में ओके Benchmark domestic equity indices today ended little changed from the previous close. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex as we call it, ended flat to close at 78,472, while the National Stock Exchange Nifty 50 rose marginally by 22 points or 0.1% to end at 23,750.
और खेलों की बात कर लेते हैं तो हॉकी इंडिया लीग कल से ओडिशा के राउरकेला में शुरू हो रही है पहला मैच दिल्ली एसजी पाइपर्स और गोनासिका के बीच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा पुरुष लीग का मुकाबला दो चरणों में होगा पहला चरण 28 दिसंबर से 18 जनवरी तक और दूसरा चरण 19 जनवरी से शुरू होगा सेमीफाइनल मुकाबले 31 जनवरी और फाइनल पहली फरवरी को होगा
इंडिया रिड्यूस्ड ऑस्ट्रेलिया टू 311 फॉर 6 एट स्टंप्स ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द फोर्थ टेस्ट मैच ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एट मेलबर्न टुडे एंड इन वेटलिफ्टिंग मार्टिना Devi clinched a silver medal in the women's junior and junior plus 87 kilogram category at the Asian Junior Championships in Doha. All right, friends, as we are committed to our freedom fighters, we shall now take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
The 26th of December is the birth anniversary of great revolutionary freedom fighter Shaheed Udham Singh. Born in Sangrur district of Punjab in 1899, Udham Singh was originally named Sher Singh. Having grown up in the early decades of the 20th century, he was heavily influenced by political events in Punjab, such as the Kamagata Maru incident in 1914 and the activities of the Ghadar Party. Udham Singh was a young boy of 20 when he witnessed General Dyer's madness at Jallianwala Bagh in 1919. The Jallianwala Bagh massacre was a turning point in his life, and Udham Singh resolved to take revenge.
Influenced by the activities of Bhagat Singh, he got involved in the Ghadar Party in 1924. For the next few years, he travelled abroad and organised Indian revolutionaries overseas to overthrow colonial rule. All this while, Udham Singh was making plans to assassinate Michael O'Dwyer.
पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल ओए पगड़ी संभाल जट्टा
20 years after the Jallianwala Bagh massacre, Udham Singh fulfilled his promise as he shot Michael O'Dwyer at a meeting in London on the 14th of March 1940. Michael O'Dwyer was the Lieutenant Governor of Punjab where the Jallianwala Bagh incident had happened. The assassination of Dwyer shook up the British authorities. Upon trial, he was sentenced to death.
The accused would be hanged till death.
Soon after, he was taken to Pentonville Prison in North London, where he was hanged to death on the 31st of July, 1940.
আমার দেশের মাটি তোমার পরে
26th of December is also the death anniversary of Bina Das. Bina Das was a revolutionary freedom fighter from West Bengal who attempted to assassinate the then governor of Bengal. Born on August the 24th, 1911 in Krishnanagar, Bina's father, Beni Madhav Das, was a teacher in Cuttack. Subhash Chandra Bose was one of his students. Her mother, Sarla Devi, was a social worker. At a young age, Bina Das joined a semi-revolutionary organization for women in Calcutta.
It was her friend Suhasini Ganguly who introduced her to the Bengal Revolutionary Party. It was then that Bina decided to assassinate the Bengal governor. At that time, Bina was pursuing graduation from Calcutta University. On the 6th of February in 1932, Bina Das walked into the convocation hall of the university with a revolver hidden under her clothes. She fired 5 bullets upon Governor Jackson, but he managed to escape. She was arrested and sentenced to 9 years of imprisonment at the age of 21. And the British government also withheld her graduation certificate.
After her release from prison, she participated in the Quit India movement.
और अब याद कर लेते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि. इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं हिंदी के यशस्वी कथाकार और निबंध लेखक यशपाल को. यशपाल राजनीतिक तथा साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी हैं. उनके लिए राजनीति तथा साहित्य दोनों साधन हैं और एक ही लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हैं.
Let's remember Ram Swarup ji, who passed away on this day 1998. He was born as Ram Swarup Agarwal and he is one of the important thought leaders of the Hindu revivalist movement. He was influenced by Sri Aurobindo, whom he held emerged to be the greatest exponent of the Vedic vision in our times.
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक और समाजशास्त्री भूपेंद्रनाथ दत्त की आज पुण्यतिथि है. ये स्वामी विवेकानंद के भाई थे. भूपेंद्रनाथ दत्त युवा काल में युगांतर आंदोलन से नजदीकी से जुड़े. अपनी गिरफ्तारी यानी 1907 तक वे युगांतर पत्रिका के संपादक थे और भूपेंद्रनाथ दो बार अखिल भारतीय श्रमिक संघ के अध्यक्ष भी रहे.
शंकर दयाल शर्मा जी, यस, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री. ही पास्ड अवे ऑन दिस डे 1999. ही ऑल्सो वॉज एन इंडियन लॉयर एंड वॉज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. And his education, well, MA in English, Hindi and Sanskrit and an LLM. And he topped all the time.
और शंकर के नाम से प्रसिद्ध केशव शंकर पिल्लई की आज पुण्यतिथि है. वो प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट थे. भारत में उन्हें राजनीतिक कार्टूनिस्ट का जनक माना जाता है और वे शंकर पिल्लई का जन्म 31 जुलाई 1902 को केरल में हुआ था. वे अंतर्राष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम की स्थापना के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं. तो श्रोताओं, इसी साथ समय हो रहा है आपसे इजाजत देने का. तो मुकेश कुमार और लालिमा अनिजा डेंग को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत.
नमस्कार.